जानो, मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्यों तुम हमारे प्रिय भक्त, इसलिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रति जानो, प्रति जाने मैंने क्या, मेरी प्रतिज्ञा का मूल्य नहीं है, मैं किसी भक्त के अनुरोध पर अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दूंगा, जैसे भीष्म की प्रतिज्ञा पर मैंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा दी, हरि से अस्त्र कहाऊं, तब शांतनु पुत्र कहाऊं, मैं तो तभी शांतनु अपने बाप का बेटा हूं, जरी हरि से अस्त्र कहाऊं, हरि ने कहा कि मैं नहीं अस्त्र लेता, मैं नहीं युद्ध करूंगा, भीष्म ने कहा कि अच्छा मैं देखता हूं कि आप अस्त्र नहीं, यदि आपसे इस महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं धारण करा लूं तो मेरा नाम भीष्म नहीं और मैं अपने बाप का बेटा नहीं, प्रतिज्ञा। अब कृष्ण जी चिंता में पड़ गए, अब इसकी प्रतिज्ञा रखूंगी, अपनी प्रतिज्ञा तो अभी रख सकते थे, खूब आसानी से रख सकते थे, अस्त्र नहीं धारण कर सकते थे, किंतु फिर भी अपने भक्तों की लाज रखने के लिए, प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को एक दो एक ही बार नहीं, लाखों बार, लाखों भक्तों के अपनी प्रतिज्ञा से, इसलिए यहाँ पर करें प्रतिज्ञा, ने तुम जानो मैं नहीं प्रतिज्ञा करता, तुम प्रतिज्ञा करो, ये भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ सकते। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, ठीक है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, ये भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को रखते हैं, इसलिए तुमसे कारण मन मना हो, अपने मन को हमारे अंदर में दो। अब उस मन में जब हमको दे दिया तो उस मन का अधिकारी कौन है, प्रभु हो गए, अब वो मन दूसरे काम में नहीं लगे, बस प्रभु के ही चिंता में रहे। मद भक्त हो इतना नहीं होता है तो क्या करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चंदनम वंदनम दक्षम सख्यात्म निवेदनम, इतना भी नहीं होता है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, इतना भी प्रभु मैं नहीं कर सकता, केवल कीर्तनम हरिनाम संकीर्तनम, ये साधन प्रभु, ये युद्ध स्थली में मैं इतना भी नहीं कर सकता, मैं युद्ध करूं, बाण चलाऊं और संधान करूं, ना मैं ये आपका स्मरण करूं, कीर्तन करूं और ये करूं। पहले उन्होंने कहा जैसे देखो लड़ो भी और हमारा स्मरण भी करो, कहे प्रभु ये दो काम एक साथ में नहीं होगा, अभी तो हमको स्मरण करना है कि शत्रु कहाँ पर है और कैसे बाण मारो, ये भी अभी नहीं होगा, तब वो कहते हैं मन मना भाव मत भक्तो मत ही आगे। अच्छा तो एक बात करो, ये तुमसे नहीं होगा तो पहले हमारा जजन करो, जजन मैंने
पूजन,
तो ये फूल ले आऊं, यहाँ चंदल ले आऊं और फिर आपकी पूजा करो इस युद्ध स्थली में, ठीक मर्यादी
मन नमस्
हमको एक बार प्रणाम कर लो बस, ये तो होगा युद्ध करने से पहले कहो जय कृष्ण आपके लिए प्रणाम है, बस कहो मत भी, ऐसे सिर झुका करके उनको मन मन में प्रणाम करो, बस इतने ही से हो जाएगा, मतलब ऐसा किसी भी संप्रदाय में किसी भी देश के किसी के धर्म के इतिहास में ऐसा कहीं लिखा गया एक बार भगवान को प्रणाम करके बस कर दो, कहीं भी ऐसा, इसलिए ऐसा उदार धर्म और कोई है ही नहीं। अब इस चीज को अब हम मिलाएंगे यहाँ पर, ये भक्त ने भगवान ने अपने मुख से ये कहा मन मना भव मत भक्त, मन मना भव ये सहज चीज नहीं है, हम किसी से कहेंगे ये तुम अपना मन हमको दे दो, आप लोगों ने कहा कि मैं मन आपको दे दिया, कोई दे दिया कैसे देंगे, भाई को आप हमको दे दीजिए, दे देंगे कंट्रोल में आपके है या देंगे, एक पैसा दे देंगे, 10 रुपया दे देंगे, 20 रुपया दे देंगे, ये सब फिर भी काट करके दे देंगे, मन कैसे देंगे, मन को देना बड़ा भारी, ये मन देने का एक ही मात्र उदाहरण है, कौन
ये दे दिया ब्रज की देवी मन मना,
इसलिए यहाँ पर वो कर रहे हैं। ये गोपियां कहती हैं ये मन मना भव है,
वो तो उदाहरण है, हम कैसे मन को दे सकें, इसका क्या उदाहरण?
वो उसी के लिए करें जो जिन्होंने मन दिया है उसका अनुसरण करो, ये बतला रहे हैं। इसीलिए सहजभाव हम लोग समझ नहीं पाते, जिसने मन दिया है उसका अनुसरण करो, सहज बात है, किंतु ये समझ नहीं आती है कैसे मन दिया।
हमने कहा है कि
बल्कि मन को मन देने से नहीं होगा, यदि कृष्ण उस मन को न ले ले स्वयं तब तक नहीं होगा। मन को ऐसा बनाओ जब कृष्ण देख करके कृष्ण को लोभ हो जाए, इसका मन हमको चाहिए, ऐसा बनाना जैसे कृष्ण को लोभ है, कृष्ण अपने आप उस मन को ले, तो ये कैसे होगा? ऐसे ही कृष्णमयी भावना से, कृष्ण सेवा की भावना में मन को उत्प्रुत कर, तब कृष्ण को लेने की जरूरत, कृष्ण उसको आकर, इसलिए मन बना भाव। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बड़े आश्चर्य की बात है, इस जगत में कहीं भी या विश्व में तीनों विश्वों में इसका पुत्रापि कहीं भी कोई ऐसा आदर्श नहीं देखा जाता है जो गोपियों के समान कृष्ण को मन दे दिया है। भीष्म पितामह तो भक्त है ना, अपने मन दे दिया तो लड़े किस लिए वहां दुर्योधन के तरफ से, उन्होंने तो शरीर ही नहीं दिया, प्रहलाद महाराज जी मन को दे दिया, हाँ वो कुछ कुछ दे सके किंतु पूरा मन को नहीं दे सके। अर्जुन है उन्होंने दिया है किंतु पूरा नहीं दिया, उसका रह गया। यशोदा मैया ने मन दिया है, उनके मन के देने में कोई बाकी रह गया कि नहीं? पूरा दे दिया है ना यशोदा मैया, नहीं दे सकी, कुछ रख लिया नंद बाबा के लिए। आ रहा है समझ में, आया कि नहीं? ऐसे आप लोग नहीं समझेंगे, कृष्ण को बुरा नहीं देते, इस तरह से समझिए। सखा लोग सब दे सके, नहीं दे सके। अभी अपनी मैया बाप को, अपने घर को, अपनी गैया को अलग से समझते हैं, गोपियों का अपना कुछ अलग है? पिता माता भाई बंधु सास ससुर पति घर शरीर कोई भी कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, संपूर्ण रूप से उनके चरणों में देख लिया, इसलिए गोपियां जैसा कोई भी आदर्श इस विषय का नहीं है। अब तुम लोग भी सोचो कि हम लोग कैसे दें, इसलिए अपने मन को ऐसा बनाओ उनकी कथाओं की लीला के स्मरण में लगाओ और संपूर्ण रूप से अपने लिए कुछ नहीं कर करके केवल उन्हीं की सेवा, धीरे 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 उनका अनुगत्य ऐसा आएगा, उनकी जैसी चिंता आएगी और उनके जैसे ही भाव आ जाएंगे तब फिर अपने मन को दिया। एक दो जन्मों का काम नहीं है, एक करोड़ जन्मों का भी काम नहीं है, एक सेकंड में हो सकता है, करोड़ जन्मों में भी नहीं होगा, एक क्षण में भी हो जाएगा। साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे लौ मात्र साधु संग सर्वसिद्धि, मैंने क्या ये सब सर्वसिद्धि ये हो सकता है, किंतु हम लोग देते हैं कुछ चुरा रखते हैं, चुरा लेते हैं, सब नहीं दे पाते, कहने के लिए दे दिया किंतु सब चोरी करते। जैसे हमने अपना सारा राज्य आपको दे दिया विश्वामित्र को, हरिश्चंद्र जी ने कहा ऐसे दक्षिणाई की कहाँ है, और इधर खजान की साहब इधर आइए, 10,000 स्वर्ण मुद्रा इनको दे दी, सारे झूठे, राज्य मेरा हो गया, खजाना तुम्हारा रहा, खजाना मेरा है, चाबी तेरे हाथ में है, कहाँ दिया? मन तो दे दिया गुरु जी को, कब दिया? दीक्षा के समय में, गुरु जी ये सब कुछ आपको दे दिया, तो फिर आप बिगड़ते और प्रसन्न होते हैं, रमते हैं, फिर क्यों नहीं दिया? नहीं दिए, बिगड़ते हैं गुरु जी के ऊपर नहीं। गुरु जी आपने ये ऐसा क्यों किया, ये नहीं पूछते जैसे मैंने अपने मन से नहीं पूछते जो तुम ऐसा क्यों कर रहे। यही तो अपने मन से लड़ाई करो। ओ कृष्ण स्वयं भगवान सर्वद्रष्टा त्रैकालिक दृष्टा है, वो आज कह रहे हैं उद्धव मैंने ऐसा प्रेम अपने प्रति किसी को नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं देखा। क्यों, ये कैसे मालूम होता है कि किसी के प्रति किसी का प्रेम है? आंख से दिखता है प्रेम? आंख से ये प्रेम नहीं दिखता। और कैसे ये मालूम होगा? कुछ तटस्थ और स्वरूप लक्षण है जिससे कि प्रेम का पता चलता है, ऐसे पता नहीं चलेगा। एक आदमी आया, उनके चेहरे में देखकर जो होगा जिस आदमी को ये चाहते नहीं, उनकी भाव भंगी दृष्टि कुछ दूसरे तरह की हो जाए, और जिसको स्नेह करते हैं तो वो क्या होगा, वो मुख से ही खुद बोला अपने आप। अब ये तटस्थ लक्षण हुआ, स्वरूप लक्षण नहीं है प्रेम। जब कृष्ण से करते हैं तो वो भी समझता है, हम एक कुत्ते को प्यार करते हैं ना, प्यार तो दिखता नहीं किंतु कुत्ता समझता है कि नहीं, ऐसे ऐसे केवल कर दिया तू 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 तू, और कुत्ता ऐसे पूछ बुलाता हुआ करते हुए बैठ जाएगा। उस कुत्ते के मुख में आप अपना हाथ भी डाल दीजिए, कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा। और थोड़ा सा ऐसे तन करके यदि कुछ कीजिए करके उस पर आक्रमण कर, ये प्रेम आंख से तो नहीं दिखता है किंतु दिखता है, तथा संलक्षण के द्वारा ये प्रेम का। इसी तरह से गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है अनुभव इत्यादि के द्वारा ये समझ जाता है। जब मिलन होगा तो खूब आनंद अपने आप मुख विकसित हो जाएगा, एक आनंद की लहर आ जाएगी हृदय में, जैसे जैसे भाव की तरंगें उठती जाएंगी मन की, ये मुख जो ऐना के समान है इस पर भी भाव बदलेंगे, भाव की लहरियां खेलेंगी उस पर, समझने वाला उसको समझेगा। और यदि विरह होगा तो इतना तीव्र विरह होगा, ताप होगा जो और कुछ। इन गोपियों का ताप देख करके उद्धव को कह रहे हैं देखो हमारे विरह में, मैं यहाँ गोकुल में हूँ मथुरा में और वो गोकुल में, इस विरह को वो सह नहीं पाएंगे। नंद बाबा के लिए नहीं कहा, किसके लिए कहा? गोपियों के लिए। वो अपने प्राण को मन को सब कुछ हमको अर्पित कर दिया है, आज हमारे विरह में इनका इतना ताप है, ऐसा ताप और ये विरह का ताप कब होता है? जिसके प्रति जितना ही प्रेम है, ममत्व युक्त प्रेम है, उसके लिए ही ऐसा होगा विरह। जिस जो लड़का माता पिता से झगड़ा लड़ाई करता है तो यहां तक कि पिता के ऊपर में उसने लड़किया से ही और चीज से वार भी किया, पिताजी को गाली भी करता है, मान ले कि वो कहीं चला गया तो माता पिता क्या कहेंगे, अच्छा युवा पद माता जी, किंतु फिर भी हृदय में उसके लिए अनुताप, वो सुधर जाता है। इसलिए अनुताप तो होता है किंतु कोई बात नहीं, और जो पुत्र सब समय पिता की सेवा करता है वो कुछ समय के लिए भी चला जाए तो उसे नहीं समझ। प्रेम के ऊपर में, ममत्व के ऊपर में ये सब चीजें हैं, जहां पर जितना प्रेम है विरह में उतना ही अधिक ताप। सखाओं को भी ताप है, वृंदावन के कृष्ण के जता जितने भी सखा हैं उनको ताप है। जैसे उनके सखा को ले लीजिए सीताराम जी को। कृष्ण चले जाने के बाद उनके साथ में गए, मथुरा में आए, कंस मारा गया। इसके बाद में वो अभी तक प्रतीक्षा कर रहे थे नंद बाबा के पास, कन्हैया चलेगा उसके साथ अब, तो फिर हम लोग ब्रज में लौट गए। दो दिन हो गया तो लौटना चाहिए, अब ये जल्दी जल्दी लौटना चाहते हैं। और कृष्ण और बलदेव को घर वाले छोड़ देंगे, तू हमारा बेटा नंद बाबा का बेटा नहीं। अब समझाने में सारा परिवार लग गया, कंस की क्रिया हुई, संस्कार हुआ, सब हो जाने के बाद में अब बच्चे अपसर नहीं रहे। कृष्ण और बलदेव जी नंद बाबा के पास में आए, नंद बाबा रोने लगे, तुम लोगों की क्या भीतर की इच्छा, चलने की इच्छा है कि नहीं। कृष्ण को अपने दाहिने गोदी में बोलो जो दूध दाहिने, और कृष्ण को बाई गोदी में बैठा बैठा करके, बेटा तुम लोग गोदी में तब ठीक थी, भीतर में कुछ गड़बड़ी तो नहीं। तो दोनों भी करके रोने लग गए। पिताजी हमको घर वाले कहते हैं यहाँ के ये तू वसुदेव का देवती का बेटा है। लोगों को भी तो ये बड़ा आश्चर्य, ये कहां से नई बात है। और छोटे ने कहते हैं कि तुम यही रहो यही रहो, आपके पास में मिलने नहीं आना देना चाहते। और सुबल सिद्धांत इत्यादि सुन रहे हैं, उनका मन कैसा हो गया, मुख कैसा हो गया,
कुमला गया
एकदम कुमला। ये तो दूसरी बात देख रहे हैं। दूसरे दिन नंद बाबा अकेले लौटे, कृष्ण नहीं लौटे, चलाकी चतुराई सब शब्द बहाना बना करके वहां पर आए। मैं परसों आऊंगा, और नहीं आए। अब सिद्धांत और सुबल इत्यादि सखा लुट गए, मथुरा तक तो साथ में आए। कोई गोपी आई, कोई भी गोपी मैया भी नहीं है, कोई भी नहीं। ये लोग तो आए कृष्ण के साथ में मथुरापुरी में घूमे, और कंस को जिस रूप में मारा उसको देखकर के साधु साधु साधु, और उनका हृदय फूल गया कि हमारे सखा ने कंस को पराजित कर दिया, किंतु अब ले करके नहीं जाए। अब कैसे कैसे लौटे होंगे, बहुत दुखी होकर के लौटे, जैसे प्राण को मथुरा में छोड़ दिया और शरीर को लेकर के गए। किंतु वहां जाकर के अब दूर गए, किंतु सिद्धांत भी नहीं भूले। बोले जब मैं अब ब्रज में नहीं जाऊंगा, घर में नहीं जाऊंगा, वो वहां पर धानवीर बन में बंसी बट के नीचे बैठ गए और रोने लगे। जब तक कृष्ण नहीं आएगा तब तक न खाऊंगा न पीऊंगा न लौटूंगा, बस वही विरह में का सब होकर कब तक पड़े रहे, जब तक ही नहीं लौटे। कब लौटे, उस समय में 5000 वर्ष तक नहीं लौटे, 5000 वर्ष प्रतीक्षा कर रहे। तब देखा एक गौर वर्ण का कोई व्यक्ति आया, एक लड़का सन्यासी के वेश में, और उसके हाव भाव को देखा तो सोचा जैसे यही भाव को अपने शरीर को छिपा करके ये वही आया है क्या हमारा। उस समय महाप्रभु जी भी रोने लगे, उनका कृष्ण का भाव की उद्दीपना हुई और उससे मिले वो भी रोने। तो सखाओं को भी होता है दुख, किंतु पागल नहीं बन गया। मैया जसोदा इत्यादि हैं अंधी हो गई, कृष्ण के दिला में दुखी हो गई। कुछ पगली सी भई थी, तो पूरा उन्माद था, नशा नहीं चढ़ा, उन्माद किसको है, इन गोपियों को। क्यों, कृष्ण के प्रति जिसका जितना ही प्रेम अधिक है, दिला का ताप भी वैसा ही अधिक होगा। नंद बाबा सखाओं को हुआ 99 डिग्री बुखार, नंद बाबा जसोदा का हुआ 101, और गोपियों को 104 से लेकर के 107 डिग्री। 107 डिग्री किसका हुआ, श्रीमती जी का। इसके बाद होने से बस अब मरना ही है और बाकी कुछ नहीं है। उस समय में उन्माद हो जाता है, शरीर का होश नहीं जाता है। ऐसे उनको, ऐसा किसी को नहीं मन। इसलिए ये कहते हैं कि हो आश्चर्य की बात है, ऐसा उन्माद, ऐसा ताप, इतना दुख और किसी को नहीं हुआ जितना कि हमारी, जो कहते हैं कि हमारी ये प्रियतम है ऐसे रोगियों को। यदि यही ममत्व कृत्य में हम लग जाए हमारी, तो हम लोग कभी अनुभूति होगी, किंतु ऐसा ममता जीत नहीं होगी, क्योंकि सातन भजन नहीं, मन निर्मल नहीं, ऐसी ममता आती नहीं है। ममता के लिए गुरु जी ने कहा जो देखो, कहते गोपाल, बाल गोपाल को घर में ले जाओ। पहले कहा कि सालक राम सीधा तो अच्छा गुजरात गोवर्धन पेट सीधा ले जाना और इनकी पूजा कर, ये तुम्हारे। फिर देखा जैसे इससे कम होगा, अच्छा राधा कृष्ण की जोड़ी तुम रख सकती या रख सकते, उनकी पूजा, इनको ही खिलाना पिलाना, लाड प्यार करना, इनको सुलाना, जैसे तुम सोते हो अपने बेटे को सुलाते हो, बच्चे को सुलाते हो, ऐसे ही वर्ष में करो। रोज इनका दर्शन, इनको रोज खिलाओ, जो खाते हो जैसा घर में बनाते हैं उनको खिलाओ। ये सब किस लिए व्यवस्था है, और इनकी व्यवस्था किस लिए, मोहम्मद को लाने के लिए। किंतु हम लोग कहते हैं बस पैसा उनकी अर्चन करते हैं, एक पैर रखा इधर एक पैर ठाकुर जी के घर में, और जल्दी से लेकर के ओम कृष्णाय नमो नमः दूर से उसको चरणांजलि पुष्पांजलि दे दी। ममता युक्त हो तब तो ये जितनी ही ममता होगी अभी कृष्ण के प्रति उतना ही समझो जैसे ये भाव होता है। इसलिए हम लोगों को साधन के लिए ही देते, ऐसा कोई साधन भजन करो जो कृष्ण में ममता आए, उनके दर्शन में ऐसी तड़फन आए। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं न प्रेम गंधो की दरात में हरो संदामी सौभाग्य फरम प्रकाशितुम बंसी विदाक्षानन अवलोकनम बिना विभत्म च प्राण पतंग कानम। ओ आप लोग कहते हैं कि हाँ हमारे अंदर में कृष्ण से प्रति प्रेम है, तो प्रेम कहाँ, मैं तो दिख नहीं पाता। एक मछली पानी के लिए तड़प तड़प करके अपने प्राणों को दे देती है। मछली देखा, देखा है मछली है? उसको दो दो सींग होती है ना, कैसी होती है मछली? बंगाल वाले जानते हैं कि मछली कैसी होती है, मैं उससे पूछ रहा हूँ। राधा की क्या किलो में, और धीरे धीरे खेचते 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 जाल के अंत भाग में नीचे में लोहे रहते हैं, लोहे एकदम जमीन तक चले जाते हैं नीचे, और ऊपर तक लंबाई चौड़ाई का जाल। समुद्र जो पूरी में चार पांच हाथ छः हाथ आठ हाथ से बेसी गहरा नहीं है, वो लहरियां आती हैं चोर बड़ी बड़ी, एक माइल तक चले जाओ यहाँ से अभी पानी नहीं है, किंतु लहर जो उठती है उसमें आदमी डूब करके मरते हैं। यदि शांत हो रहा है ना, अभी पानी गहरा नहीं है वहाँ, अभी से अभी चार हाथ पांच हाथ छः हाथ, उसमें से मछलियों को खेच करके लिया, बड़ी बड़ी मछलियाँ, और जहाँ पानी के लिए छत फट छत फट करते भी प्राणों को छोड़ दिया। भगवान के प्रति मेरा कहाँ प्रेम, ये आज दिन इतने दिन हो गए अभी तक मरा नहीं, मछली दो मिनट में अपने प्राणों को छोड़ देती है पानी के लिए, और हम लोग अभी प्रभु के लिए अभी प्राण नहीं गया। महाप्रभु जी का प्रेम कहाँ, इतने रोते हैं कि इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को पाने, बाबा बहुत बड़ा भारी व्यवस्था है। इसलिए नयन अंगल दास धारया बदन गद गद रुद्धया गिरा कुल करनी तन बहु कदा तव नाम ग्रहणी बहु। नाम ग्रहण करने के समय से ये सब चीजें नहीं आती, धिकार है। इतने दिन से गुरु से दीक्षा ली हुई हो गई, हर नाम करते हैं और भाव की एक रेखा भी नहीं आती है, हृदय में तड़फन नहीं होती, आंसू नहीं आते, हृदय द्रवित नहीं होता है, पुलकित रोमांचित नहीं। तो क्या हुआ, हर नाम लिया, कितने दिन हरि नाम, हम जब दिखा दिए हुए तो 50 वर्ष हो गया। कहाँ रहते हैं? वृंदावन में रहते। देखा कि से कोई बात होगी, चिमटा उठाया और शिष्य को या दूसरों को मारना आरम्भ कर, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए लगा। कहाँ ये सब लक्षण? इसलिए ममत्व पर ही निर्भर करता है, गोपियों का सुख के प्रति ममता है। तो वही इसी के लिए कहते हैं, ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है न सुना जाता है, गोपियों को श्रीमद भागवत से निकाल दो, या हमारे वाङ्मय में से, भारतीय वाङ्मय में से वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, स्मृति, न्याय और सब चीजों से निकाल दो श्रीमद भागवत, और श्रीमद भागवत से गोपियों के क्षेत्र को बाहर कर दो, क्या रह जाएगा? कुछ नहीं। उस सत्य का कोई मूल्य नहीं। सत्यम वद अहिंसो अहिंसा परमो
धर्म,
यह सब बेकार का हो जाएगा यदि उसमें से प्रेम को निकाल। इसलिए कहते कहीं नहीं देखा जाए। वेदों में कहीं गोपियों का चरित्र या ऐसे किसी भक्त का चरित्र का वर्णन है जो ऐसा प्रेम? वेद में इसोपनिषद में ऐसा लिखा गया कि एक बूढ़ा बाप था, बूढ़ा बाप बहुत यज्ञ करता था वो ऋषि, और जितनी सूखी दुबली पतली पतली गोबर करने वाली गायों को खर्च ले आता, हजारों हजारों गायों को, अब दूध नहीं देती है। कैसी कैसी गायों की गोबर कैसा होता है, ऐसी गायों को खरीद ले आता, अखर करके उनको दान करता, ब्राह्मणों को दे, ले जाओ। ब्राह्मण तो चराने के भी, चराने के गोदान होता है, आठाने का होता है, 1.25 रुपए का होता है, 1.25 रुपए का होता है, 1.5 हजार का, 4 हजार का, 10 हजार का, 20 हजार का भी होता है। चराने की बच्ची आपको घाट पर मिल जाएगी, जिसको दान करना है दान कर। हम लोग बक्सर में देखा, रामरेखा घाट पर ग्रहण के समय में या वो संक्रांति के मेले में, सब दुबली पतली छोटी सी बच्चियां लेकर के खड़े रहते हैं, 1.25 रुपए की ये बच्चियां दान है, और ये 1.25 रुपए का, ये 150, ये 200, ये 500 का, ऐसा एक तरह से बिजनेस है। किस विषय में लगा रहा था? गायों का दान करते थे। बेटा जरा बुद्धिमान था और सरल था, बोले पिताजी ये नहीं कहा कि आप गायों को ऐसे अच्छी अच्छी गायों को दान दीजिए। पिताजी को कुछ बात भी कड़ी ना लगे और वो समझ भी जाए, इसलिए चलाकी से बोला, पिताजी इन गायों का इतना दान करते हैं, हमको किसको दान देंगे? इसलिए कहा उनका मेरे ऊपर में ममत्व है, ममत्व की चीजें नहीं दी जाती। बेटे का दान कभी कोई करता है? तो वो कहते हैं जैसे अरीब का गाय देना है तो अच्छी अच्छी गायों को, जिनके स्थान हो, जिनका एक सुंदर सा बछड़ा या बछड़ी सुदक रही हो, 5-10 किलो गाय चूल्हे दे और बड़ी पुष्ट है, सिंह सुंदर है, उसमें सोने की सिंह लगा दो, और खुरों को कैसे करो,
चांदी से
मढ़ो, और सिल्कन कापड़ सुनहरी धागों के साथ में देकर के ब्राह्मण को दान दो, यदि दान देना है तो ऐसा दो। तो वो सुनेगा नहीं पिता, इसलिए कहा जैसे किसको दान देंगे? मुझे एक दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, 4 दिन कहा, सुनी नहीं गया। तो फिर उन्होंने एक एक दिन में 2-2 बार 4-4 बार कहा, तो वो बिगड़ गया, तुमको जम को देंगे जाओ। तो बड़ा खुश हो गया बेटा। तब दूसरे दिन उनको प्रणाम करने, पिताजी मैं जा रहा हूँ जम के पास में, आपको प्रणाम करने के लिए, अरे मैंने सचमुच में तुमको जम को दिया, मैंने तो बिगड़ करके दिया, कहीं आपने जब बात कही थी अब आपकी बात पूरी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे बहुत समझाया तुम माना नहीं, जम के पास। वैसा दीदी और वैसा लड़का भी सचमुच में वो पहुंच गया जम के पास। कोई होगी व्यवस्था यदि हमारे उस ऋषि के अभिसंपात दिया कैसे मर गया वो परीक्षित महाराज जी को सांप कैसे आ गया? वाणी ने पूछा है ब्रह्मचर्य का बल है। ऐसे वो लड़का भी तो साधारण ही होगा जो पिताजी से ऐसा कह रहा है। ब्रह्म विद्या होगी, अपने ब्रह्म विद्या से चला गया किंतु अधूरी है, अभी स्वर्ग तक जा सकती है, अभी आगे नहीं पहुंच सकती, इसलिए वहां पर अपने तेज से अपने उस भाव से वहां पर पहुंच गया। मान लिया कि नहीं गया, चिंता करेगा तो वो आ जाएगी कि नहीं? खैर इतनी नहीं, उस उपनिषद में ऐसा ही ऐसी हो गए। और जब वहां पर उस समय घर में नहीं थे, 3 रात वो बाहर थे, जमी थी उनकी स्त्री थी जिनसे जमुना जी पैदा हुए।
जमुना
तो उनका भाई है,
जहाँ भाई
भाई माना जी भाई बहन,
वो वहां पर थे नहीं, उनकी पत्नी थी। मैंने कहा उसका अवभगत करके उसको अतिथि के रूप में रखा। कहा जी आप कैसे आए? तो मैं उनसे मिलने आया, कोई खास जरूरत और दूसरे से नहीं। तो 3 दिन नहीं आए तो ये 3 दिन उपवास रहा, मैं न खाऊंगा न पीऊंगा, जिस काम से आया हूं वो काम होना चाहिए। 3रे दिन जमाए आकर के सबसे पहला उनका काम हुआ जी उस बच्चे को बुलाओ। बच्चे को बुलाया, पूछा जी मैं तुम हमारे यहाँ अतिथि आए हो इसलिए मैं तुमका आदर फैसला करता हूँ, और मेरे लिए जो गलती हो गई 3 दिन तुमसे नहीं आया मिला और तुम 3 दिन पुकारा, इसके लिए तुम 3 बार मांगो। तो उन्होंने 3 बार मांगी, उसमें से 1 बार मांगा, 1 बार में तो मांगा कि पिताजी की बुद्धि सिद्ध हो जाए। ऐसा जो करते हैं बूढ़ी गाय को देते हैं उनकी बुद्धि पलट जाए और अच्छी चीज देते हैं जैसे उनका कार्य हो। और दूसरे में कुछ और मांगा,
हम ये पिताजी गुस्सा भेजा था, गुस्सा भी उनका उतर जाएंगे, भूल जाएंगे ऐसे उनसे व्यवहार,
और वो हमारे प्रति जो व्यवहार उन्होंने किया है उसको वो भूल जाएंगे। और तीसरे में मांगा आप उसको आत्मतत्व विद्या दी, मैं कौन हूं, इस शरीर में मन एक है, मन के भीतर में एक आत्मा छिपी हुई है जो ये कहती है ये सुख है ये दुख है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति जिसमें है उस आत्म तत्व को उपदेश हमको की। वो कहते हैं जैसे एक बात करो, तुमको संसार में जो सबसे अच्छी से अच्छी चीज हो, मूल्यवान से मूल्यवान चीज है वो तुम मांग लो। पत्नी चाहिए, राज्य चाहिए, पृथ्वी का राज्य चाहिए, स्वर्ग का राज्य चाहिए, ये सब चुन नहीं, नहीं हमको इसकी जरूरत। मोक्ष ले लो और कोई चीज की जरूरत नहीं है हमको, भाई आत्मविद्या। आत्मा क्या है? अब आत्मा भी 2 प्रकार का, एक आत्मा और एक परमात्मा। हम लोग एक एक के शरीर में जो है वो है व्यक्तिगत, और सबके जो साक्षी के रूप में जो परम आत्मा है शेष आत्मा है वो है परमात्मा। उस परमात्मा के जानने से अपना भी जानना हो जाता है, जैसे सूर्य के उठने से ये वस्तु वो वस्तु सूर्य मैं सबका ज्ञान हो जाता, ऐसे वो तत्व को बहुत तरह से उन्होंने किया। जबकि नहीं माने तब उन्होंने आत्मतत्व का उपदेश कैसे उपदेश किया? हमारे द्वादश महाजन हैं, द्वादश महाजन हैं 12, उन महाजनों में ये जम भी एक भगवत तत्व को जानने वाले हैं। किस प्रमाण से आप कहते हैं? अरे तो भागवत में ही प्रमाण है। जम दूत लोग गए और उनसे कहा जैसे प्रभु आपके अतिरिक्त और कोई जगत का कर्ता धरता है? कहाँ हमारे एक और हैं, वही जगत के प्रभु आराध्य हैं। वो कौन है? वो प्रभु विष्णु ब्रह्मांड के हिसाब से। तब उन्होंने आत्मतत्व को उनको प्रदान किया, तब वो जगत से फिर लौटे। पिताजी बड़े प्रसन्न, उनकी बुद्धि भी ठीक हो गई और सब। अच्छा, इसमें ये तो बताया आत्मतत्व, ये आत्मा क्या है, नित्य है, अजर है, अमर है, है? और आनंदमय है, ये सब तो है। इसी को जानने के लिए चेष्टा करनी चाहिए, किंतु भगवत प्रेम के संबंध में चेष्टा है। प्रहलाद महाराज जी इतने उच्च कोटि के हैं, भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। भगवान ने कहा कि वर मांग लो, उन्होंने कहा कि वर नहीं मांगी, मैं बनिया नहीं। बनियागिरी भी जिनमें नहीं है, भगवान के प्रति विशुद्ध भाव उनका है। सर्वत्र वो देखते हैं क्या है, जैसे ये जगत में जितने चीजें हैं ये ब्रह्मा है, भगवान है। अपने अंदर में देखते हैं और भगवान में सब जीवों को देखते हैं। कभी प्रेम की बातें कुछ हुई, कोई प्रेम की बात। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, हनुमान जी, पांडव लोग, उद्धव जी, और ये उद्धव से उद्धव जी जाते हैं ब्रज में, उन गोपियों की चरण धूलि लेते हैं। उन्हीं गोपियों के संबंध में कृष्ण उनको समझा रहे हैं परब्रह्म, इनके अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो गोपी प्रेम को समझा हो, कोई भी समझने वाले हैं नहीं। सबसे अधिक कृष्ण ही समझते हैं जो गोपियों को हमारे प्रति कृष्णा करें। ऐसी घोरी भारी यदि नारद जी चले आए ना, नारद जी के चरणों में गिर पड़ेंगे और नारद जी क्या करेंगे, इनको आशीर्वाद देंगे, किंतु कहेंगे कि मैं गोपियों की चरण धूलि बन जाऊं। कृष्ण स्वयं उनके पीछे पीछे चलते हैं, किस लिए? गोपियां चलेंगी पीछे से, उनकी धूल उड़ेगी चरणों से लगी हुई, और हम मैं पवित्र हो जाए। यह स्वयं ऐसा है, इन्हें गोपियों की महिमा जितनी कृष्ण जानते हैं और कोई नहीं जानता। हाँ, गोपियां जानती हैं, ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, सब दामोदर है, रामानंद, ये सब लोग जानते हैं, और लोग अधिक नहीं है। इसलिए कृष्ण स्वयं उनको समझा रहे हैं, उद्धव जी जैसे लोगों को, ये गोपियों का प्रेम कैसा है, आप जाओ देखेगा तुम ये कैसे ये गोपियां हैं। इस संसार में जितने भी प्रिय वस्तु हैं, उनमें सबसे पहला कौन है प्रिय? पति प्रिय होता है, पति के बाद में सब पुत्र होता है, है? इसलिए स्त्रियों के लिए। अभी मान लिया कि हम भारतवर्ष में हैं और बहुत से राष्ट्र हैं, यदि हम पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो तो हम किसका पक्ष लेंगे? भारत में उत्तर प्रदेश से और मथुरा से लग गया लड़ाई, हम किसका पक्ष लेंगे? उत्तर प्रदेश में भी हमको लग गया झगड़ा कहीं बाहर से, भरतपुर से और वृंदावन से, किसका पक्ष लेंगे? अब वृंदावन अपने परिवार से दूसरे परिवार से लड़ाई लगी, किसका पक्ष लेंगे? अपने परिवार, अपने परिवार में चाचा जी से और हमारे पिताजी का की लड़ाई हुई, किसका पक्ष लेंगे? अपने पिताजी। अच्छा, फिर यदि बाप में और बेटे में, बाप में और उसके लड़के में और उसके पति में, दोनों में लड़ाई हो गई, पत्नी है और उसका बेटा है और उसके पति हैं, तो बेटे में और बाप में दोनों में लड़ाई हो गई, अब स्त्री किसका पक्ष लेगी? पति का पक्ष। ऐसा ही मैंने स्वभाव है, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति है। यदि पुत्र का कोई ले तो वो उचित नहीं उतना कहा जाएगा, पति उसका सर्वस्व है, पुत्र के साथ में उसका कोई कंडीशन में कुछ नहीं है, किंतु पति के साथ में उसका कंडीशन विवाह के समय ही लगा दी जाती, हम एक दूसरों को नहीं छोड़ें, इसलिए उचित ऐसा ही। अब पति में और अपने में झगड़ा लग गया किसी बात पर, अनबन हो गई, तो किसका पक्ष लेगी? अपने अपने शरीर में ये हाथ में गैंगरिंग रोग हो गया। गैंगरिंग रोग माने क्या?
अंदर से
टांगा लगा, डॉक्टर ने कहा भाई ये आपको बात देना है नहीं तो आप मरेंगे, क्या करेगा? अपने बचने के लिए प्राण पर कोई संकट आई, ऐसी कोई लज्जा आई जिसमें अपने प्राणों को नहीं रखना है, प्राण पर जब आया तो अपने शरीर को भी हम छोड़ दें। इसलिए सही सभी अधिक प्रिय क्या हुआ? प्राण। ये बतला रहे हैं सनातन गोस्वामी जी धीरे धीरे। अच्छा, प्राण भी अपने छोड़ देते हैं धर्म के लिए, कैसे? अभी सुनो, अभी भारत वर्ष के लिए भगत सिंह ने क्या किया? हंसते हंसते अपने प्राणों को बलिदान देकर के और सूली पर, ये तो इसके लिए। धर्म के लिए हमारे अर्जुन सिंह के पुत्र, उनको औरंगजेब ने दीवारों में चुनवा दिया, कलमा पढ़ो हिंदू धर्म छोड़ दो नहीं तुम्हें जीवित लगा दें, मारेंगे नहीं, क्या करेंगे?
दीवार को चुनवा, धीरे धीरे
चुनवा, बस यहाँ तक चुनवाया, अब यहाँ तक चुनवाया, अब बोलो यहाँ तक चुनवाया, अब बोलो, थोड़ा सा नाक से अभी ले रहे हैं, अभी कलमा पढ़ो, काजिम मरते दम तक नहीं, अंत में इतना चुनवा दिया और इसके बाद में देखते देखते किंतु धर्म नहीं गया। कैसा धर्म के लिए प्राण छोड़ दिया, इस करते उससे प्राण छोड़ देते हैं। इस प्राण से भी प्रिय, प्राण क्या चीज है? प्राण एक वायु है, आत्मा नहीं है, आत्मा मरती नहीं, ये शरीर में रहने के लिए वायु की जरूरत है, भौंकनी के समान। उस प्राण को छोड़ना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, आत्मा को नहीं छोड़ा जा सकता, तो ये प्राण को से भी अधिक मोक्ष है। मोक्ष माने क्या? अत्यंत दुख निवृत्ति, अब जन्म मरण से अतीत हो जाना। और उससे भी प्रिय क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति, इससे बढ़कर के और कोई चीज? ये प्रेम लक्षणा माने कृष्ण की सेवा, जिसमें कृष्ण प्रसन्न हो, ये कृष्ण की प्रसन्नता जीवों के लिए इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। ये गोपियों में है परिपूर्ण रूप में और कहीं नहीं। ये सब विषय प्रिय वस्तु में मैं ही उनका सबसे सब कुछ हूं, जितनी प्रिय वस्तुएं हैं वो सबको आप सार दे लो। कृष्ण कहते मैं ही उनका सब कुछ, ये मुक्ति से भी प्रेम से भी जो कुछ है सब मैं हूं। ये दूर में है, मैं यहां पर हूं, मेरे लिए तड़प रहे हैं, इस तरह से गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रेम हो तो आज यहीं तक रहे, कल उसके बाद में